एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के गहरे समंदर में उतर रहे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है, डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर की जागृति की शक्ति यानी द पावर ऑफ अवेकनिंग।
नमस्ते। और ये किताब हाँ, आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हम अक्सर देखते हैं लोग बाहरी तौर पर बहुत सफल होते हैं, अच्छा करियर, घर, सब कुछ, लेकिन अंदर एक खालीपन सा, एक बेचैनी सी महसूस करते हैं। डायर इसे दिव्य संतोष कहते हैं, डिवाइन डिसकंटेंट, एक एहसास कि जरूर जिंदगी में कुछ और भी है, कुछ गहरा।
बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस किताब के जो मूल विचार हैं उनको समझें, ये जानने की कोशिश करें कि आखिर हम अपनी असलियत से, अपने अंदर की शांति से इतने कटे हुए क्यों महसूस करते हैं और कैसे उस गहरे अर्थ और जुड़ाव की तरफ वापस लौट सकते हैं जिसका जिक्र डायर करते हैं।
हाँ,
ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं बल्कि शायद अपने अंदर झांकने का एक न्योता भी है।
और इस सफर में हमारे गाइड हैं लेखक डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर। उन्हें अक्सर प्रेरणा का पिता कहा जाता है और उनकी अपनी कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। सच में अनाथालयों में पले बड़े, फिर शिक्षा और मनोविज्ञान में अकादमिक करियर बनाया और फिर धीरे धीरे एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक बन गए। काफी लंबा सफर था उनका।
हाँ, उनकी यात्रा ही अपने आप में कमाल की है। एक मनोवैज्ञानिक जो मन की गहराइयों को समझता है, उसका अध्यात्म की ओर मुड़ना और फिर पश्चिमी मनोविज्ञान और पूर्वी दर्शन, जैसे आपने कहा ताओवाद और वेदांत, इनको मिलाकर आम लोगों के लिए इतना आसान बनाना, ये उन्हें एक अनोखी विश्वसनीयता देता है।
सही कहा।
वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने खुद ये बदलाव जिया था।
बिल्कुल। उनकी विश्वसनीयता इसी बात में है कि उन्होंने खुद वो यात्रा तय की जिसके बारे में वो लिख रहे हैं। मतलब अहंकार की पकड़ से निकलकर एक ज्यादा जागरूक और अर्थपूर्ण जीवन की ओर, और इसी अनुभव से निकली है ये किताब जागृति की शक्ति।
तो क्या है इस किताब का सार, एसेंस क्या है इसका, ये हमें कहाँ ले जाती है?
बुनियादी तौर पर यह किताब एक तरह का नक्शा है, कह सकते हैं। ये हमें उस यात्रा पर ले जाती है जहां हम अपनी पहचान सिर्फ अपनी उपलब्धियों, संपत्ति या दूसरों की राय से जोड़ना बंद करते हैं, जिसे डायर अहंकार या झूठा स्व कहते हैं, और अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा या उच्च स्व से जुड़ना सीखते हैं। ये सतही चमक दमक से गहरे संतोष की ओर एक बदलाव की कहानी है।
और इसका मुख्य तर्क क्या है, मतलब किस बुनियाद पर यह किताब खड़ी है?
डायर कुछ बहुत ही मौलिक, फंडामेंटल बातें कहते हैं। पहली, हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो इस धरती पर मानवीय अनुभव ले रहे हैं। ये सोचना ही अपने आप में क्रांतिकारी है।
हाँ, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है।
दूसरा, हमारा ज्यादातर दुख, चिंता और डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने अहंकार, उस मैं और मेरा वाले हिस्से से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं।
ये अहंकार
हमेशा तुलना करता है, डरता है और कभी संतुष्ट नहीं होता।
तो ये अहंकार ही सारी जड़ है। और फिर समाधान क्या है, कहाँ मिलेगा?
डायर के अनुसार समाधान बाहर नहीं, भीतर है,
अंदर ही है।
समाधान है अपने उस आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति जागरूक होना,
अवेकन होना।
ये जागृति हमें याद दिलाती है कि हम सब प्रेम, शांति और एक अनंत स्रोत से जुड़े हुए हैं।
अच्छा।
किताब इसी जागृति की प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन करती है। अहंकार के भ्रमों को कैसे पहचाने, अपने अंदर की सच्ची आवाज कैसे सुने और अपने जीवन को कैसे प्रेम और उद्देश्य के साथ जिए।
चलिए तो इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब का पहला हिस्सा अहंकार को समझने पर जोर देता है, जिसे डायर झूठा स्व कहते हैं। ये सिर्फ घमंड नहीं है, है ना?
बिल्कुल।
जैसा आपने पहले कहा।
बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। डायर कहते हैं अहंकार हमारी चेतना का वो हिस्सा है जो सिर्फ बाहरी भौतिक दुनिया से अपनी पहचान बनाता है, और ये कुछ गहरे विश्वासों पर टिका होता है। डायर 6 मुख्य विश्वासों की बात करते हैं, लेकिन एक जो शायद आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है वो है, मैं वो हूं जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं।
ओह, ये तो बहुत आम है। सोशल मीडिया के जमाने में तो शायद ही और भी बढ़ गया है ना?
हाँ, बिल्कुल।
लाइक, कमेंट्स, फॉलोअर्स, हमारी पूरी कीमत जैसे दूसरों की नजरों पर टिकी हो।
हाँ, और सोचिए ये कितना दबाव बनाता है। हम लगातार एक मुखौटा पहने रहते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी असलियत छुपाते हैं। एक और गहरा विश्वास है, मैं सबसे अलग हूँ। ये हमें लगातार दूसरों से तुलना करने और प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर करता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा सफल है। ये सोच ही हमें अकेला और असंतुष्ट महसूस कराती है।
ये अलगाव का भाव और एक और विश्वास जिसका डायर जिक्र करते हैं, मैं ईश्वर या स्रोत से अलग हूँ, ये शायद सबसे बुनियादी भ्रम है। ये हमें महसूस कराता है कि हम अकेले हैं, मदद के लिए कोई बाहरी शक्ति चाहिए।
हाँ, जबकि डायर कहते हैं कि वो शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है, हम उससे अलग नहीं है। और यही विश्वास कि हम दूसरों की राय पर निर्भर हैं, कि हम दूसरों से अलग हैं, कि हम स्रोत से कटे हुए हैं, यही लगातार चिंता, डर और एक कभी ना मिटने वाली कमी का एहसास पैदा करते हैं। हम हमेशा कुछ साबित करने, कुछ पाने या कुछ खोने से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही आंतरिक संघर्ष हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है।
तो ये हुई अहंकार की कहानी, लेकिन फिर जिंदगी में एक मोड़ आता है जिसे डायर क्वांटम उछाल या जागृति का आह्वान कहते हैं। ये क्या है, ये कैसे होता है?
ये वो क्षण है या वो दौर है जब अहंकार का बनाया हुआ ढांचा चरमराने लगता है। अक्सर ये जीवन के मध्य भाग में होता है, जिसे कालयुग, जीवन की दोपहर कहते हैं, जब बाहरी सफलता हासिल करने का जुनून थोड़ा कम होता है और अंदरूनी दुनिया की ओर ध्यान जाने लगता है।
अच्छा,
ये आह्वान किसी बड़े संकट के रूप में आ सकता है, कोई बीमारी, नौकरी का जाना, रिश्ते का टूटना, कुछ भी।
या फिर वो धीमी लगातार चलने वाली बेचैनी, वो दिव्य असंतोष कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गायब है, वो खालीपन।
हाँ बिल्कुल, और डायर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यहाँ ये है कि इस बेचैनी या संकट को एक समस्या की तरह ना देखें, इसे एक आध्यात्मिक बुलावा समझें। ये आत्मा की पुकार है जो कह रही है कि अब अंदर मुड़ने का समय आ गया है। ये विकास का दर्द है जो हमें चेतना की एक गहरी अवस्था की ओर खींच रहा है। इसे नजरअंदाज करना आसान है, पर यही वो दरवाजा है जो हमें अहंकार की कैद से बाहर निकाल सकता है।
तो जब ये बुलावा आता है, जब हम इस बदलाव के लिए तैयार होते हैं, तब हमें कुछ सहारे, कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है। किताब का अगला हिस्सा इन्हीं परिवर्तन के उपकरणों पर बात करता है, टूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन।
हाँ, और सबसे पहला और शक्तिशाली उपकरण है हमारी विचारों की शक्ति को पहचानना और इस्तेमाल करना। डायर का एक बहुत मशहूर कथन है, जब आप चीजों को देखने का अपना तरीका बदलते हैं तो वे चीजें जिन्हें आप देखते हैं बदल जाती हैं।
ये तो सुना।
ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये समझना है कि हमारी धारणा, हमारा नजरिया हमारी वास्तविकता को घड़ता है।
मतलब अगर हम लगातार कमी और डर पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें वही दिखेगा, और अगर हम शांति और प्रेम के विचारों को चुनेंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी।
बिल्कुल, ये सचेत चुनाव करने की बात है, हम अपने मन में क्या बो रहे हैं, डर के बीज या प्रेम के। एक और महत्वपूर्ण उपकरण है जाने देना या समर्पण,
सरेंडर।
सरेंडर
मतलब हार मान लेना।
ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बुद्धि पर भरोसा करना, अपनी जिद छोड़ना कि चीजें वैसी ही हों जैसी हम चाहते हैं।
अच्छा,
सही होने की जरूरत छोड़ना, नतीजों से लगाव छोड़ना, ये कमजोरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शक्ति और शांति का रास्ता है।
पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। रोज की जिंदगी में जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती।
हाँ, मुश्किल तो है, वही तो अभ्यास है। रोजमर्रा की जिंदगी में ही नियंत्रण छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है।
और शायद यहीं पर मौन और ध्यान जैसे अभ्यास काम आते हैं, मेडिटेशन वगैरह।
निश्चित रूप से, रोज कुछ देर चुपचाप बैठना, अपने विचारों को बस देखना बिना उनमें उलझे, ये अहंकार की लगातार चलती बकबक को शांत करने में मदद करता है। ये हमें अपने विचारों और अपनी सच्ची पहचान, जो विचारों से परे है, के बीच एक दूरी बनाने में मदद करता है। इसी शांति में हम अपने अंदर की आवाज, अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को सुन पाते हैं।
डायर इंटेंशन या स्रोत ऊर्जा से जुड़ने की भी बात करते हैं, ये क्या है? ये हमारे सामान्य इरादे मतलब इंटेंशन से कैसे अलग है?
डायर के लिए इंटेंशन सिर्फ हमारी इच्छा या लक्ष्य नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो रचनात्मक शक्ति है जो हर चीज में मौजूद है, प्रेम, सौंदर्य, विकास, प्रचुरता। जब हम अपने जीवन को इन गुणों के साथ संरेखित करते हैं, जब हम प्रेम चुनते हैं, दया दिखाते हैं, अपनी रचनात्मकता व्यक्त करते हैं, तो हम उस सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं।
अच्छा,
तब चीजें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो सहजता से होने लगती है। ये विल पावर से ज्यादा गहरे स्तर पर काम करता है।
तो इन उपकरणों का इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे एक अलग तरह का जीवन जीना शुरू करते हैं, जिसे डायर जागृत जीवन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा बदलाव है महत्वाकांक्षा से अर्थ की ओर बढ़ना, एम्बिशन टू मीनिंग।
हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। महत्वाकांक्षा अहंकार की भूख है, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा ताकत, ये सब बाहरी चीजें हैं। और डायर कहते हैं कि ये रास्ता अंत में खालीपन की ओर ही ले जाता है, क्योंकि अहंकार कभी तृप्त नहीं होता, हमेशा और चाहिए होता है।
जबकि अर्थ, मीनिंग कहाँ से आता है?
अर्थ अंदर से आता है। ये तब मिलता है जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं और दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जागृत जीवन का सवाल बदल जाता है, मुझे क्या मिल सकता है की जगह सवाल बन जाता है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ।
ये संतरे वाले रूपक की तरह है जिसका डायर इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे संतरे का स्वभाव है अपना रस देना।
हाँ बिल्कुल, वैसे ही हमारा स्वभाव है अपनी उन्हीं की प्रतिभा, अपना प्रेम दुनिया के साथ बांटना। और कमाल की बात यह है कि डायर कहते हैं जब हम देने पर, सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलने लगता है जिसकी हमें जरूरत होती है, अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से। ब्रह्मांड हमारा समर्थन करता है। ये पारंपरिक सफलता के मॉडल को पूरी तरह उलट देता है जहां पहले पाने पर जोर होता है।
ये विचार तो हमारे समाज में, जहां महत्वाकांक्षा को अक्सर बहुत सराहा जाता है, काफी क्रांतिकारी है। तो फिर इस जागृत जीवन की पहचान क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्या ये लोग हमेशा शांत और खुश रहते हैं?
जरूरी नहीं कि हमेशा बाहरी तौर पर सब शांत हो, लेकिन हाँ, एक गहरी आंतरिक शांति जरूर होती है।
यस,
पीस। सभी लोगों और चीजों से जुड़ाव का गहरा एहसास होता है क्योंकि वो अलगाव का भ्रम टूट जाता है। दूसरों के प्रति निर्णय या आलोचना कम हो जाती है और जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव जगता है। ये परफेक्शन हासिल करना नहीं है, बल्कि ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा प्रेमपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना है।
इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि डायर हमें एक बहुत ही बुनियादी बदलाव के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपनी पहचान को अहंकार से हटाकर अपनी आत्मा से जोड़ना। यही शायद सबसे बड़ा संदेश है ना?
हाँ बिल्कुल, और दूसरा बड़ा संदेश है सफलता की परिभाषा को बदलना। महत्वाकांक्षा जो सिर्फ अपने लिए बटोरने पर केंद्रित है, उससे हटकर अर्थ की ओर बढ़ना, जो देने और सेवा करने में संतोष पाता है। ये सोचना कि सच्ची खुशी पाने में नहीं बल्कि अपना श्रेष्ठ दुनिया को देने में है, ये हमारे जीने का पूरा नजरिया बदल सकता है।
और ये विचार कि हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है, ये भी बहुत शक्तिशाली है। जब आप चीजों को देखने का अपना तरीका बदलते हैं, तो वे चीजें जिन्हें आप देखते हैं बदल जाती हैं। ये हमें अपनी सोच की जिम्मेदारी लेने और सचेत रूप से शांति, प्रेम और प्रचुरता के विचारों को चुनने के लिए प्रेरित करता है। ये पावर हमारे हाथ में है।
सही कहा। और अंततः अलगाव का भ्रम और एकता की सच्चाई, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, रियलिटी ऑफ वननेस। ये समझना कि हम सब एक ही जीवन स्रोत से जुड़े हुए हैं, एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, ये एहसास ही हमें ज्यादा करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है।
हाँ, ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कितना मिलता जुलता है। पूरी दुनिया एक परिवार है।
बिल्कुल,
ये सब सुनने में बहुत गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारना कैसे शुरू करें? कोई एक दो व्यवहारिक चीजें जो कोई भी आजमा सकता है, प्रैक्टिकल टिप्स।
शायद सबसे आसान शुरुआत है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, माइंडफुलनेस। दिन में बस कुछ पल रुककर देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप आलोचना कर रहे हैं, डर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? बस नोटिस करें, बिना खुद को कोसे,
जजमेंट के बिना।
हाँ, बिना जजमेंट के। ये जागरूकता ही पहला कदम है। डायर इसे साक्षी भाव कहते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं।
और शायद कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ये आजकल काफी लोकप्रिय भी है।
हाँ, और बहुत प्रभावी भी। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये हमारे दिमाग को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। ये कमी के भाव को प्रचुरता के एहसास में बदलता है और तुरंत मूड बेहतर कर सकता है।
ये तो किया जा सकता है। और शायद सेवा का कोई छोटा सा कार्य, जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा हो।
बिल्कुल, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी सहकर्मी की मदद कर देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना बिना किसी उम्मीद के। ये छोटे छोटे काम हमें मैं से हटाकर हम की भावना से जोड़ते हैं और देने की खुशी का अनुभव कराते हैं। ये अभ्यास अहंकार को धीरे धीरे पिघलाने में मदद करते हैं।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी के बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही? टेक अवे क्या है?
मेरे लिए शायद ये एहसास कि जागृति कोई रहस्यमयी या बहुत दूर की चीज नहीं है। डायर इसे बहुत सरल बनाते हैं। ये कुछ नया बनने या हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये याद करने के बारे में है कि हम असल में कौन हैं, वो शांत, प्रेमपूर्ण जुड़ा हुआ स्वरूप जो अहंकार के शोर के नीचे हमेशा मौजूद रहता है। ये पहचानना है, पाना नहीं। इट्स अ रिकॉग्निशन, नॉट एन अचीवमेंट।
ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली विचार रहा महत्वाकांक्षा से अर्थ की ओर बदलाव का। ये सोचना कि सच्ची सफलता और संतोष दुनिया से कुछ लेने में नहीं, बल्कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देने में है, ये पूरी तरह से जीवन जीने के मायने बदल देता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने का रास्ता भी दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, प्रेम और उद्देश्य में है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।